તારીખ 19/11/1997, ડાયરીના બોલ નંબર 1714 અને 373 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 152.
भावना में अपनापन करने की प्रगट शक्ति है। माइक में थी ना भावना क्या करती है? अपनापन करती है। जिसको जिसकी भावना है, जिसको जो प्रिय लगता है उसमें वो अपनापन करती है। ऐसी प्रकट शक्ति है। जैसे आत्मा अपना स्वरूप है, आत्मा में अपनत्व किया जाए, आत्मा में अपनत्व किया जाए तो उसका अपनत्व करने की उसमें शक्ति है, प्रकट शक्ति है। शक्ति दो तरह की होती है, शक्ति रूप और व्यक्ति रूप। तो ये व्यक्त शक्ति है, प्रकट शक्ति है। अतः इसका फल भी महान है। स्वरूप में अपनत्व करने से इसका फल केवल ज्ञान आता है। क्या होता है? स्वरूप में अपनापन करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक चारित्र प्राप्त होता है और आखिर में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष। परंतु अनादि से जीव पर की भावना करके भाव भ्रमण कर रहा है जी। अपनापन तो करता ही है जीव, लेकिन अन्य पदार्थ में करता है। अपने आत्मा को छोड़ करके, स्वरूप को छोड़ करके शरीर में अपनापन करता है, नए नए शरीर धारण करना पड़ता है। और शरीर में अपनापन करता है तो फिर शरीर के जितने भी संबंधी है
जी,
उनके साथ भी अपनापन करता है। शरीर के अनुकूलता के साधन है उसके पर भी अपनापन करता है। जो अनुकूलता देता है ऐसे लोगों के प्रति भी अपनापन करता है। ऐसे जीव अनादि से पर की भावना करके भाव भ्रमण कर रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जीव को भाव भ्रमण का कारण पर की भावना है। भाव भ्रमण का कारण क्या है? पर की भावना।
परनी भावना એટલે પરની ઈચ્છા,
પર કી ચાહત, પર કી પ્રિયતા, પર મે અપનાપન,
ચાહત।
अच्छा लगता है। भावना में क्या होता है?
अच्छा,
कहते हैं मुझे ये चीज मुझे भाती है। भावना की क्रिया क्या होती है? भाना। जो जो जीव भावना से निज स्वरूप को भाते हैं
जी,
तो अवश्य भव भ्रमण मिटता है। पर की भावना से भव भ्रमण होता है
जी,
और अपने स्वरूप की भावना से भव भ्रमण मिटता है। क्यों? क्योंकि आत्मस्वरूप भाव रहित स्वयं ही है, अपना जो स्वरूप है वो स्वयं ही भाव रहित है, इस स्वरूप का विज्ञान है, साइंस है
जी।
आत्मा में
जी।
भाव करने का कोई गुण धर्म नहीं, शक्ति नहीं है, इसलिए भाव होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ऐसे स्वरूप को भूल करके, भाव रहित स्वरूप को भूल करके एक मिसकॉन्सेप्ट में जीव रहता है, जो जो भाव धारण करता है मैं उतना ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मान करके राग द्वेष मोह करके भाव भ्रमण बढ़ाता है। फिर से
जी, हाँ जी।
जो जीव निज स्वरूप की भावना से स्वरूप को भाते हैं उसका भव भ्रमण अवश्य मिट जाता है, क्योंकि जिसको भाता है वो भव रहित पदार्थ है। आत्मा मूल में परमात्मा तत्व होने से वो भव रहित पदार्थ है। जैसे परमात्मा भव रहित है, तीर्थंकर आदि सिद्ध भगवान आदि, वैसे आत्मा भी भव रहित है।
बराबर।
वो परमात्मा कैसे हुए कि अपने स्वरूप को भा करके, भाव रहित स्वरूप को भावना में लेकर के ऐसे ही बन गए। तो यशो विजय जी का आठ दृष्टि की सज्जाए है, उसमें एक पद आता है, कृपा रुद्र ने लिया है, जीन थई जिन ने आराधे ते सही जिनवर हो गए रे। क्या लिखा?
जीन थई,
जीन होकर के जिनको मैंने अपने स्वरूप को जो आराधन करता है वो जिनवर मैंने जिनेंद्र होता है, वही परमात्मा होता है।
बराबर।
मतलब परमात्मा तत्व का ध्यान, परमात्मा तत्व का ध्यान, उससे परमात्मा पद की प्राप्ति, प्रगट परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। घेड़ी छे परमात्मा पद नु ध्यान, परमात्मा पद नी प्राप्ति नु कारण छे। परंतु वो ध्यान सत्पुरुष की चरण की विनय उपासना बिना
कोई न थे।
हो सकता नहीं है, संभव नहीं है। यह निर्ग्रंथ भगवान का सर्वोत्कृष्ट वचनामृत है, ऐसा करके लिखा है। परमात्मा के ध्यान से परमात्मा हुआ जाता है, लेकिन ऐसा ध्यान ज्ञानी के चरण की उपासना के बिना, विनय की उपासना के बिना किसी को ध्यान हो सकता नहीं है। क्योंकि ध्यान कैसे सिखाए, अंतर्मुख होने का किससे सीखेगा, किससे समझेगा? निज स्वरूप की भावना से अवश्य भाव भ्रमण मिटता है, क्योंकि स्वरूप से तो भाव रहित स्वयं ही है।
बराबर।
इस प्रकार मोक्ष मार्ग में स्वरूप भावना का और उस भावना का अनगिनत, गिनती में नहीं आवे, अनगिनती के लायक अनुपम
जी
फायदा मैंने लाभ है। और वे निश्चित बात होने के कारण से, ऐसा निश्चित होने के कारण से भावना का, स्वरूप भावना का अत्यंत महत्व है। स्वरूप भावना का अत्यंत महत्व है। आत्म भावना भाते जीव लहे केवल ज्ञान, सूत्र दिया कि नहीं? एक भावना में आ जाए, शुरू में आत्म कल्याण की भावना में आ जाए, बाद में इसको स्वरूप की भावना में आ जाए, स्वरूप पहचानने से, तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं और कोई क्रिया करने की भी जरूरत नहीं, सब स्वयं हो जाएगा। शास्त्र ज्ञान भी अंदर से प्राप्त हो जाएगा और वो भावना वो स्वयं ही परिणाम की क्रिया होने से अन्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कितना सुगम उपाय है, अनादि से जो उपाय समझे नहीं किया नहीं वो इतना सुगम उपाय है।
भावना तो आवड़े छे जीव ने करता,
पर भावना भाता नहीं आता, भाने को नहीं आता है, वो बात है ही नहीं, पर की भावना तो भाता ही है। अब बात रही स्वयं की भावना भाने की, पर की भावना भाते भाते भव भ्रमण करके दुखी हुआ, अब इस दुख से मुक्त होने की बात है और आत्म शांति और आत्मिक सुख प्राप्त करने की ये बात है। कुछ लंबे छोड़े नाथाकूट में नहीं जाना है, क्योंकि ये भी प्रश्न होता है कि अनपढ़ का मोक्ष होता है कि नहीं होता है, क्या होता है? भावना में आया, स्वरूप की भावना में आया, शास्त्र ज्ञान भीतर में से प्रकट हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो ज्ञान बिना पढ़े होता है वो पढ़ने से नहीं होता, ऐसा चैतन्य आत्मा का चमत्कार है, ये चैतन्य चमत्कार है
जी।
ये 11 अंक की 12 अंक की जो लब्धि होती है, 11 अंक 14 पूर्व मैंने 12 अंक की जो लब्धि होती है, वो कोई पढ़ने से नहीं होती, वो स्वरूप में लीन होने से प्रकट होता है। 12 अंक का ज्ञान कोई पढ़ने को बैठे तो उसका आयु भी उतना नहीं हो सकता, क्योंकि अरबों के अरब श्लोक है उसमें, कितने हैं? अरबों के अरब श्लोक है, पढ़ने को बैठे समझे समझने को बैठे तो आयु पूरा पूरा हो जाए। मनुष्य आयु है कितना, लेकिन स्वरूप में भावना में स्वरूप में लीन होने वाले को 12 अंक का ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाता है। देखिए ना, ये गौतम स्वामी समूह शरण में आए,
बराबर
थे, तो वेदांत के हिंदू धर्म के बड़े गुरु थे, तो भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में आए और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी तो सुनते ही सम्यक दर्शन पा करके मुनि पद को ग्रहण कर लिया और स्वरूप में लीन होते 12 अंक का अंतर्मुहूर्त में ज्ञान हुआ। कितना अंतर्मुहूर्त? मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर, पढ़ने को बैठे तो हजारों साल लगे, पर गौतम स्वामी को 1 घंटे में 12 अंक का ज्ञान हुआ कैसे, कोई शास्त्र पढ़ने से बताया गया
नहीं?
तो शास्त्र पढ़ करके ज्ञानार्जन करना वो सही पद्धति नहीं है। जो जीव स्वरूप में लीन नहीं हो सकते हैं वही शास्त्र पढ़ने में चढ़ जाते हैं, या तो उपयोग को कोई अशुभ भाव में नहीं ले जाना हो तो शास्त्र पढ़ो ही भले ठीक है
बराबर,
परंतु स्वरूप में लीन हुए बिना आत्मज्ञान भी नहीं और शास्त्र ज्ञान भी सही शास्त्र ज्ञान नहीं है। ये संक्षेप है भावना के विषय का। भावना की बात करके ज्ञानियों ने उपाय को सुगम, अपना हित का उपाय को सुगम कर दिया है और सर्वश्रेष्ठ उपाय बता दिया है। कोई अंधे होते हैं पढ़ नहीं सकेंगे, कोई कान चला गया तो सुन नहीं सकेंगे, तो क्या वो आत्मकल्याण नहीं कर सकता क्या?
कर सकता।
सुनना भी नहीं हुए पढ़ना भी नहीं हुआ दोनों चला गया तो क्या आत्मकल्याण नहीं कर सकता है? क्यों कर सकता है। बीमार हो गया, शरीर से अशक्त हो गया, आत्मकल्याण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? डेथ बेड पे कर सकता है क्या? मृत्यु शैया जिसको बोली जाती है गुजराती में, मरण पथारी, मरण पथारी पथारी ये पड़ो है, मृत्यु शैया पे पड़ा हो लेटा हो आत्मकल्याण कर सकता है अगर स्वरूप की भावना में आ गया तो। ऐसी चीज भावना वाली है। क्योंकि भावना तो भीतर की चीज है और ये सब बाहरी चीज है। बाहर में कोई समर्थ हो, शक्तिवान हो, नहीं हो, कोई जरूरत नहीं। वैसे परिणाम तो जीव करता ही है, भावना का परिणाम करें, परिणाम को तो कोई रोक नहीं सकता। भाव तो होते ही रहते हैं, एक सेकंड भी किसी जीव का भाव हुए बिना नहीं रहता, बंद होता है क्या? अब बात रही किसका भाव करना, दूसरे का करना या अपना करना, उतनी बात रही। दूसरे का करोगे दुखी हो जाओगे, अपना करोगे तो सुखी हो जाओगे, बस उतना ही है। वो दिया है कृपा देव ने 539 में
जी।
पर में अपनापन करके परिभ्रमण बढ़ता है और निज में अपनापन करके परिभ्रमण छूटता है। 539 में लिया है। बस ये संसार परिभ्रमण और संसार से मुक्त होने का संक्षेप इतना ही है। या तो उल्टी भावना करो या तो सुल्टी करो। उल्टी तो कर ही रहे हो अनादि से और दुखी हो भी रहे हैं।
537 में ये जो बात करी ने हमने, अटलू जो परिणाम जीव में पामे सर्व व्रत नियम
सब कुछ कर चुका, शास्त्र ज्ञान भी कर चुका और व्रत नियम भी हो चुका, सब कुछ हो गया, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ साधन बोलने में आया है।
पढ़ने के मारा माने से ये प्रकार की भावना है अंदर में, उल्टी भावना चले,
जैसे कोई जीव मूंग के दाने में पैदा हुआ, क्यों? उसकी भावना उस पदार्थ की बहुत थी, मूंग बहुत भाता था तो मूंग में चला गया। हमको दाल भी मूंग की चाहिए, और पापड़ भी मूंग का चाहिए और हलवा भी मूंग का चाहिए। तो इस तरह से जो सब चीज में मूंग ही मूंग चाहिए तो बात खत्म हो गई, चला गया मूंग में। और कोई छिपका मोती होता है, ये देवलोक में के जो जीव गए ना वहां थोड़ा वैभव का शौक ज्यादा होता, बहुत मोती प्रिय और लग गया, मोती के ही गहने पहने, कान में भी मोती के, गले में भी मोती के, मुकुट में भी मोती के, वहां से आयु पूरा हो गया, चला गया समुद्र में, छिप में छिप का मोती हो गया, और हीरे वाला हीरे की खान में चला गया। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी गति होती है। देव एक इंद्री भयो छेड़ाला माता, एक इंद्री कैसे हो गया,
भावना
भावना भाई, क्योंकि भावना के साथ कुदरत बंधी हुई है, इसलिए उल्टी भावना भी सफल होती है और सुल्टी भी सफल होती है। परमात्म पद की भावना निज परमात्म पद की भावना परमात्म पद को प्राप्त कराती है, संसार के पदार्थ की भावना वहां ले जाती है। एक जीव मूंग में पैदा होता है, एक चना में होता है, एक चावल में होता है, ऐसा क्यों, कि जिसकी जैसी भावना। कहीं भी ज्यादा अधिक कोई चीज प्रिय लगे तो अपने वहां गति हो जाएगी, आयु इस तरह का बन जाएगा, नया आयु का कर्म बंध है उसी टाइप का हो जाएगा। ये कुदरत की व्यवस्था है। गेहूं बोने से गेहूं उगता है और चावल बोने से
चावल।
कुदरत की व्यवस्था ही ऐसे, पानी प्रकाश और खाद तो सबको एक ही मिलता है और एक ही जमीन में सब बगल बगल में पैदा होते हैं। जैसा बीज बोया वैसा ही उगेगा। प्याज खाने से प्याज का डकार आएगा, कस्तूरी का थोड़ी ना आएगा, ऐसा।
व्यक्त शक्ति से पहलू बात है
भावना में अपनापन करने की प्रगट शक्ति है, व्यक्त माने
प्रगट
शक्ति है और करता ही है, सब जी उल्टी तो करता ही है और ऐसा बन जाता है। जीन थी जिनने आराधे सो सही जिनवर हो मेरे, जीन थी मैंने, मैं अपने जीन स्वरूप ही हूँ ऐसा श्रद्धा में लेकर के
जी।
उसी में लीन होता है श्रद्धा पूर्वक स्वरूप में, जिनेन्द्र बन जाता है। सीधी बात है, सरल और सीधी बात है। जिसने अंतरंग में सत्रह सौ चौदह विचार करना, समझना, सत्संग में विचार करते हैं, समझते हैं, यह तत्व अभ्यास की प्राथमिक भूमिका है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में पहले विचारते हैं और विचार करके सम्मत करते हैं तो वो लाके समझ गया मैं। और समझ अगर यथार्थ होती है तो
जी।
यथार्थ समझ होती है यह हे उपादेय का विवेक रूप परिणमन करती है। समझ में यथार्थ समझ हुई तो क्या आगे हुआ कि मेरे को प्राप्त करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है। जैसे कि सर्व प्रकार के दोष है, दोष है वो त्याग करने योग्य है और गुण है वो प्राप्त करने योग्य है। तो यथार्थ समझ हे उपादेय का विवेक रूप परिणमन करती है। अतः समझ के बाद उपादेय को ग्रहण करने की भूमिका में प्रवेश होता है। विवेक से क्या हुआ, जो उपादेय है उसको ग्रहण करने का प्रयत्न प्रयास चालू हुआ, नई भूमिका आई। पहले समझ विचार करना, समझे विचार किया विवेक हुआ, विवेक होने से जो भी ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करने का प्रयास चलेगा। ये प्रयास की दूसरी भूमिका आई, समझने की पहली भूमिका, प्रयास करने की दूसरी भूमिका। प्रथम गुण ग्राहीपना द्वारा अपना दोष का ही पना आता है। दोष तो है ही, सभी मनुष्य में कुछ न कुछ प्रकृति दोष, अभिप्राय दोष होता ही है। तो सबसे पहले यथार्थ समझ में गुण ग्रहण करने का दृष्टिकोण पूर्वक अपना दोष का छोड़ने का प्रयास चलता है। और जब दोष को छूटने का प्रयास चलता है तो अध्यात्म में प्रवेश करने में, आगे बढ़ने का, अध्यात्म दिशा में आने का एक अवसर आता है। वो अध्यात्म में प्रवेश करने में विभाव से भिन्न एकिला ज्ञान ग्रहण करने का प्रयत्न का अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है। अध्यात्म में आ गया है दोष का हेयपना होने से, निषेध होने से निर्मलता आई, और निर्मलता आने से अध्यात्म की भूमिका में विभाव से भिन्न, रागादि विभाव से भिन्न मात्र ज्ञान, एकला ज्ञान, उसको स्वयं के रूप में अनुभव करने का, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा ग्रहण करने का प्रयास, बार बार प्रयास, ऐसा प्रैक्टिस चलता है, वो अध्यात्म के परिणाम हुआ
जी।
वहां से अध्यात्म की लाइन चालू हुई। कैसे कैसे शुरू किया? विचार से, विचार से लेकर के अध्यात्म तक इस तरह पहुंचा जाता है। प्रमाणिकता का स्वीकार है, फिर इससे फिर आगे बढ़ करके उसकी भिन्नता देखनी है ज्ञान से। इस प्रकार से आत्मलक्षी समझ, कैसी समझ? आत्मलक्षी समझ आखिर में भेद ज्ञान में परिणमित करती है, विभाव और ज्ञान को भिन्न भिन्न कर लेती है। और भेद ज्ञान में क्या होता है
जी?
कि भेद ज्ञान में मैं ज्ञान मात्र
जी,
इस प्रकार का प्रयास से स्वयं का ज्ञान मात्र रूप से ग्रहण होता है। ग्रहण होता है मैंने वेदन होता है, अनुभवन होता है, और उस प्रकार की प्रैक्टिस जब चालू रहती है तो स्वानुभव मैंने आत्म साक्षात्कार प्रकट होता है। इस प्रकार से यथार्थ समझ से आत्मलक्षी समझ से आत्म साक्षात्कार तक कैसे पहुंचा जाता है, इसका संक्षेप इधर लिया है।
अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु परो, अहो अहो उपकार, सुप्रभु चरण कने धरु, आत्मा ते सोहि ते तो प्रभु ए आपियो, करतु चरणाधीन आदि आदि आजति, वरतो प्रभु आदि दास दास मुदास छु, आप प्रभु नो दीन, चट स्थानक समझाविने दीन बतायो आप, ज्ञानत की तलवार वन ए उपकार यमां, जे अस्वरूप समझाविनां आम्यो दुखनं, समझाव्यो ते पदनमु श्री सद्गुरु भगवन्, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो मान निज तेने सदा प्रणाम, देहशता जेनी दशा वरते देया તે જ્ઞાની ના ચરણમાં હો વંદન અગણી, હો વંદન અગણી. પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનું જય, દિનવાણી માતનું જય, સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનું.
ऐसे तो पिताजी के अच्छा कमाया हुआ बहुत